वचन। नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज से हम अपने इस बाइबल अध्ययन में पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम से लूका रचित सुसमाचार का विस्तार पूर्वक अध्ययन करने जा रहे हैं। इसमें हम आनंद के भाव की प्रधानता देखते हैं, विशेषकर प्रारंभिक अध्यायों में जिसमें यीशु के आगमन की घोषणा की गई है और अंत में भी जहां प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण का वर्णन है। तो आइए श्रोताओ, इससे पहले कि आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
मसी महिमा, मसी महिमा हो, तेरी महिमा हो, मसी महिमा। हो घर में तेरी महिमा, हो बाहर तेरी महिमा, हो घर में
प्रिय मित्र, आपको प्रभु यीशु के पवित्र नाम में नमस्कार। आज के इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने पिछले अध्ययन में लय व्यवस्था की पुस्तक का अध्ययन समाप्त कर लिया है और आज हम नया नियम की तीसरी पुस्तक लुका रचित सुसमाचार से अपना अध्ययन आरंभ करेंगे और सबसे पहले हम इस पुस्तक के परिचय को देखेंगे। तो आइए हम सब आज इसके परिचय को देखें, परंतु इससे पहले कि हम इसमें जाएं, आइए परमेश्वर से सहायता मांगे और प्रार्थना करें। हमारे अत्यंत दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबको दिया है ताकि हम आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ की परिपूर्णता दे और आपके वचन से हम में से हर एक से बातचीत करें ताकि प्रभु आज का अध्ययन हम सब के लिए आशीष का कारण ठहरे। हमारी विनती है हमारे उन भाई बहनों के लिए भी जो किसी रीति से दुखी, निराश, परेशान और बीमारी और चिंता में हैं, प्रभु आप उन पर भी कृपा दृष्टि करें ताकि वे भी स्वस्थ और भले चंगे होकर आपके नाम को महिमा दे सकें। इस समय फिर से एक बार हम सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं, आप हम सब की सहायता करें। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्र, कुलुसियों की पत्री के चौथे अध्याय के 14 पद के अनुसार लुका एक प्रिय वैद्य या चिकित्सक था। जैसा कि लिखा है, प्रिय वैद्य लुका और देमास का तुम्हें नमस्कार। औषधि के जनक हिप्पोक्रेटस से भी ज्यादा लुका ने औषधि संबंधी शब्दों का प्रयोग किया है। तीसरे सुसमाचार को लिखने के लिए पवित्र आत्मा द्वारा लुका को चुनना यह दर्शाता है कि पवित्र शास्त्र का कोई भी लेखक आकस्मिक नहीं है। लुका का चुनाव अलौकिक था और उन दिनों बुद्धिमान कहलाने वाले लोग अधिक नहीं थे, परंतु लुका उस श्रेणी का था। वह और पौलुस दोनों स्पष्ट रूप से बहुत उच्च बौद्धिक स्तर के थे और साथ ही साथ वे उच्च आत्मिक स्तर के भी थे। यह आंशिक रूप से व्याख्या करता है कि क्यों उन्होंने एक साथ यात्रा की और स्पष्ट रूप से प्रभु में पक्के दोस्त बन गए। डॉक्टर लुका अपने दिनों के वैज्ञानिक की श्रेणी के थे और उन्होंने नए नियम के किसी भी लेखकों से उत्तम यूनानी भाषा लिखी। वह एक अचूक इतिहासकार थे, जैसा कि हम आगे देखेंगे। लुका एक कवि था, केवल उसी ने क्रिसमस के मनोहर गीतों को लिखा है। लुका एक कलाकार था, वह हमारे लिए मसीह के अद्भुत विलक्षण दृष्टांतों को चित्रित करता है। मित्रों, डॉक्टर लुका का जीवन परंपराओं से बहुत कुछ घिरा हुआ है। वह अपना सुसमाचार मरियम के दृष्टिकोण से लिखता है, जो यह प्रमाणित करता है कि निश्चित रूप से उसने अपने सुसमाचार के लिए सूचनाओं को मरियम से प्राप्त किया था। निश्चय ही उसने उससे वार्तालाप किया था और वह गैर यहूदियों में से था। इस बात को मानने के लिए बहुत से कारण भी हैं। अधिकांश विद्वान इस स्थिति में सहमत होते हैं और कुलिसियों के चौथे अध्याय में पौलुस उनके बीच भेद दिखलाता है, जो खतना वाले हैं और दूसरे लोग जो वास्तव में गैर यहूदी में से थे। जिस समूह में से लुका का जिक्र भी वो करता है, श्री विलियम रैमसे और जे एम स्टफलर दृढ़ता से कहते हैं कि लुका एक गैर यहूदी था। ये बात इसे हम में से उनके लिए जो गैर यहूदी हैं पूर्णतया रोचक बना देती है कि नहीं। मित्रों, याद रखें कि लुका ने प्रेरितों के काम पुस्तक को लिखा है और जहां हम पढ़ते हैं कि वह प्रेरित पौलुस का साथी था। प्रेरितों के काम के 16 अध्याय उसके 10 पद में वह कहता है, उसके यह दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकीदुनिया जाना चाहा। मेरे ख्याल से वह दूसरी और तीसरी मिशनरी यात्रा में पौलुस के साथ था। इस पद में आगे वह प्रथम पुरुष के रूप में लिखता है और यह प्रेरितों के काम की पुस्तक का हम खंड है। इस पद से पहले वह तृतीय वचन में लिखता है। अतः हम प्रेरितों के काम 16 अध्याय से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि लुका यूरोप के ऐतिहासिक यात्रा पर पौलुस के साथ था और संभवतः वह पौलुस के द्वारा परिवर्तित किया गया था और उसके बाद वह उसके साथ दूसरी मिशनरी यात्रा पर गया और अंत तक उसके साथ रहा। प्रिय मित्र, जब पौलुस तीमुथियुस को अपनी अंतिम कृति लिख रहा था, तब वह कहता है, दूसरा तीमुथियुस की पत्री 4 अध्याय उसके 11 पद में, केवल लुका मेरे साथ है। ये सारी बातें स्पष्ट करती है कि क्यों पौलुस लुका को प्रिय वैद्य कहता है। यीशु द्वितीय मनुष्य है परंतु अंतिम आदम है और इसलिए ऐसा लिखा है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था और दूसरा मनुष्य स्वर्गीय था। पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय 45 और 47 पद में हम इसे पाते हैं। परमेश्वर मनुष्यों को यीशु के जैसा बना रहा है। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। पहला योना की पत्री 3:2 में हम इसे पढ़ते हैं। अतः यीशु द्वितीय मनुष्य है और इसके कारण वह तीसरा, चौथा और करुणवा भी होगा। फिर भी वह अंतिम आदम है, मानव परिवार का कोई दूसरा मुखिया या प्रमुख नहीं होगा। इब्रानियों के पत्र 2:17 में हम यीशु के बारे पाते हैं, अपने भाइयों के समान बने थे ताकि उसके भाई भी उसके समान बने। प्रिय मित्र, 19वीं शताब्दी के अंत में संदेहवाद की एक लहर चली थी जिसने पूरे यूरोप और ब्रिटिश द्वीपों को प्रभावित किया था। विक्टोरियाई युग ने जो आशावाद उत्पन्न किया था उसमें वहां निराशा और भ्रांति थी। वहां इसके विरोध विद्रोह था जिससे समलैंगिक उत्पन्न हुआ। ये बहुत से विद्वानों के लिए बाइबल का और अधिक गहन अनुसंधान या छानबीन करने वालों के कारण भी बना, जो विक्टोरियाई युग की पुस्तिका बन गई। आरंभ करने से पूर्व अविश्वासी थे और उनमें एक विलियम रामसे नाम का बहुत अधिक प्रतिभाशाली जवान विद्वान क्रैमविज में था, और वह एक अज्ञेयवादी था जो बाइबल की यथार्थता का खंडन करना चाहता था। वह जानता था कि लूका ने अपने सुसमाचार में यीशु का ऐतिहासिक अभिलेख को लिखा है, और यह भी जानता था कि उसने प्रेरितों के काम की पुस्तक में पौलुस की मिशनरी यात्रा के बारे में लिखा है। वह यह भी जानता था कि सभी इतिहासकार गलतियां करते हैं और उनमें से बहुत लोग झूठे होते हैं। मित्रों, समकालीन लेखक विल और एरियल ड्यूरेंट, जिन्होंने 4,000 साल के समय के बीच सभ्यताओं का अध्ययन करने में 40 साल बिताए, उन्होंने अपनी पुस्तक इतिहास के अध्यायों में निम्न कथन कहा है, भूतकाल के विषय में हमारा ज्ञान हमेशा अधूरा रहता है, संभवतः सही नहीं होता है, इतिहासकारों और उभयभावी प्रमाणों के कारण अस्पष्ट, और शायद हमारी अपनी देशभक्तिपूर्ण या धार्मिक अंधभक्ति के द्वारा मिथ्या वर्णन करने के द्वारा धुंधला या अस्पष्ट होता है। अधिकांश इतिहास अनुमानित होता है और बाकी पूर्वाग्रह में लिखा हुआ होता है। यह कहना उचित होगा कि श्री विलियम रामसे का भी यही विचार था। जब वे एक पुरातत्व के रूप में एशिया के मध्य में इस बात को असत्य प्रमाणित करने के लिए गए थे कि डॉक्टर लूका एक इतिहासकार थे, उसने सावधानीपूर्वक पौलुस की यात्राओं का अध्ययन किया और एशिया के मध्य का संपूर्ण अध्ययन किया, तब वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि डॉक्टर लूका ने एक भी ऐतिहासिक अपरिशुद्धता नहीं की है। यह खोज विलियम रैमसे को एक विश्वासी बना देता है, और उसने पौलुस की यात्राओं और एशिया के मध्य की कलीसियाओं पर कुछ विशिष्ट पुस्तकें भी लिखी हैं। डॉक्टर लूका ने अपना सुसमाचार दोहरे उद्देश्य से लिखा है। उसका पहला उद्देश्य था साहित्यिक और दूसरा था ऐतिहासिक। 4 सुसमाचारों में से लूका का सुसमाचार सबसे अधिक पूर्ण और ऐतिहासिक विवरणात्मक सुसमाचार है। इसमें अन्य सुसमाचारों की अपेक्षा उस काल की प्रथाओं, रिवाजों, भूगोल और इतिहास से संबंधित अधिक विस्तृत संदर्भ या प्रसंग हैं। उसका दूसरा उद्देश्य आत्मिक था। लूका ने यीशु मसीह के व्यक्तित्व को एक संपूर्ण ईश्वरीय मनुष्य और संसार के उद्धारकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया है। यीशु देह रूप में परमेश्वर का प्रगटीकरण था। मत्ती इस बात पर जोर देता है कि यीशु मसीहा के रूप में जन्मा था। मार्कुस इस बात पर जोर देता है कि यीशु यहोवा का दास था, और लूका इस सत्य पर जोर देता है कि यीशु संपूर्ण मनुष्य था। यूहन्ना इस सत्य को प्रस्तुत करता है कि परमेश्वर मनुष्य बन गया। फिर भी यह ध्यान देने वाली और रोचक बात है कि यूहन्ना ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उपयोग नहीं किया है। डॉक्टर लूका विवरण देता है कि उसने नासरत के यीशु को परखा और पाया कि यीशु परमेश्वर है। वह उसी निष्कर्ष पर पहुंचा जैसा कि यूहन्ना ने किया था, परंतु उसकी प्रक्रिया शैली भिन्न थी। मत्ती प्रभु यीशु को मसीहा, राजा और छुड़ाने वाला के रूप में प्रस्तुत करता है। मार्कुस ने मसीह को महान विजेता और जगत के शासक के रूप में प्रस्तुत किया है, और यूहन्ना मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रस्तुत करता है। लूका परमेश्वर का परिपूर्ण ईश्वरीय पुत्र, हमारा महान महायाजक, हमारी दुर्बलताओं की भावना से द्रवित, हमारी मदद करने, दया दिखाने और हमें प्यार करने में सक्षम के रूप में उसे प्रस्तुत करता है। मित्रों, लूका ने अपने देश के लोगों को लिखा जैसा कि मत्ती ने अपने लोगों को लिखा। लूका ने यूनानी विचार रखने वाले और बुद्धिजीवी समुदाय को लिखा है। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में यूनानियों ने इतिहास के क्षितिज पर सबसे प्रतिभाशाली और चमकने वाले मनुष्य की अपूर्व बुद्धि का प्रदर्शन किया, जिसे संसार ने कभी नहीं देखा था। यह पेरिक्लीन युग कहलाता है, जो पेरिक्लेस और एथेंस के बौद्धिक और भौतिक उत्कर्षता या अग्रता के काल से संबंधित था। यूनानियों ने श्रेष्ठ मनुष्य और श्रेष्ठ मानव स्वभाव को विकसित करने का प्रयत्न किया था। मनुष्य के द्वारा प्राप्त की गई यह पूर्णता भौतिक दायरे में साथ ही साथ मानसिक दायरे में भी फिदायस की प्रतिमा के जैसे काम में देखी जाती है। वे लोग एक सुंदर और साथ ही साथ सोचने वाले मनुष्य के लिए परिश्रम कर रहे थे। प्लेटो, एरिस्टोटल, होमर, एस्किलेस, सोफोक्लेस, यूरोपिडेस, एरिस्टोफेंस और यूसिडेडेस सभी के साहित्यिक कार्य संपूर्ण मनुष्य के दृष्टि की ओर मुड़ते हैं और संपूर्ण मनुष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं। यूनानियों ने उनके ईश्वरों को मनुष्य की समानता में बना दिया। वास्तव में उनके ईश्वर मनुष्य के प्रक्षेपण थे। अपोलो, वीनस, एथेना और डायना की राजसी प्रतिमाएं पूर्व देश के मूर्तिवाद से निकले हुए कुरूप प्रतिरूप नहीं थे। उन्होंने मनुष्य को उसके उत्तम गुणों और मूल भावों से देवता तुल्य बना दिया। अन्य यूनानी देवताओं में पान, क्यूपिड, वेखस, अंगूरी शराब और रंगरलियों का देवता और एफ्रोडाइट देवता शामिल थे। उनके सभी देवता कृपालु नहीं थे। उनमें से कुछ प्रतिशोध वाले क्रोधी देवता भी थे, क्योंकि वे मानव जाति का प्रक्षेपण करते थे। सिकंदर महान ने इस पकड़ बनाने वाली या नियंत्रण करने वाली संस्कृति, भाषा और तत्व ज्ञान को उन सभी देशों में फैला दिया जिसे उसने जीता था, और यूनानी भाषा एक विश्वव्यापक भाषा बन गई। सिकंदरिया और मिस्र में पुराने नियम का अनुवाद यूनानी भाषा में किया गया। हम उस अनुवाद को सेप्टोजिंट के नाम से जानते हैं। यह पुराने नियम के उत्कृष्टतम अनुवादों में से एक है जो हमारे पास है। नया नियम यूनानी भाषा में लिखा गया और यूनानी भाषा ने संपूर्ण मानव जाति के लिए सुसमाचार की अभिव्यक्ति और संचार के लिए माध्यम प्रदान किए। यह सत्य को व्यक्त करने और विचार का संचार करने की एक उत्कृष्ट भाषा रही है। यद्यपि कि यूनानी भाषा, संस्कृति और तत्व ज्ञान सबसे उत्कृष्ट थे, फिर भी यूनानी लोग मानवता को सिद्ध बनाने में नाकामयाब रहे। यूनानियों को आदर्श राज्य नहीं मिला। वे कभी अति प्रसन्नता देने वाले क्षेत्र पर नहीं पहुंचे और उन्होंने आत्मिक क्षेत्र का दर्शन ही खो दिया। ये संसार उनका घर, क्रीड़ा क्षेत्र, पाठशाला, कारखाना और कब्र बन गया। प्रिय मित्र, डॉक्टर एफ डब्ल्यू रॉबर्टसन ने यूनानी के विषय में इस प्रकार से कहा, यूनानियों ने जितना अधिक अपने आप को संसार से जोड़कर रखा, उतना ही अधिक अनदेखा एक धुंधली दुनिया बन गया। और यही कारण है कि यूनानियों ने अनजाने ईश्वर की एक प्रतिमा बनाई, और जब प्रेरित पौलुस ने उनके बीच सुसमाचार का प्रचार किया, तब इसी विषय से आरंभ किया। उन्नत एथेंसवासी अविश्वासी थे और वे पौलुस को बकवादी कहकर पुकारते थे, और उन्होंने सच्चाई बताने के प्रयास के लिए उसकी हंसी उड़ाई। मित्रों, पौलुस ने घोषित किया कि यूनानियों के लिए सुसमाचार मूर्खता है, परंतु उसने यूनानी मन वालों को भी पत्र लिखा। उसने उन्हें बताया कि पूर्व के दिनों में वे गैर यहूदी थे और इस संसार में बिना आशा के और परमेश्वर रहित थे। मित्रों, वही यूनानियों का एक रूप था, परंतु पौलुस ने उन्हें यह भी बताया कि जब सही समय आया तब परमेश्वर ने अपना बेटा भेज दिया, जो व्यवस्था के अधीन एक स्त्री से जन्मा, और परमेश्वर का वह बेटा उनके लिए मर गया। पौलुस विश्वव्यापक भाषा में एक संपूर्ण मनुष्य जो संसार के लोगों के लिए मर गया, उसके बारे में वैश्विक सुसमाचार का प्रचार करते हुए रोमी मार्गों पर चला। इसराइल का धर्म केवल फरीसी को उत्पन्न कर सकता था, रोम की सत्ता केवल कैसर को उत्पन्न कर सकती थी, और यूनान का तत्व ज्ञान सिर्फ सिकंदर महान जैसे असाधारण गुणों से संपन्न एक वैश्विक व्यक्ति को उत्पन्न कर सकता था जो हृदय से केवल नाबालिग था। यह इस यूनानी मन के लिए था जिसे लूका ने लिखा है। उसने यीशु मसीह को एक सिद्ध मनुष्य, सार्वभौमिक मनुष्य और बिल्कुल वैसे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है जिसकी तलाश यूनानियों को थी। प्रिय मित्र, लूका के सुसमाचार में इन मुख्य विशेषताओं पर ध्यान दें। पहला, लूका का सुसमाचार सामान्य अवलोकन वाले सुसमाचारों में से एक है, फिर भी इसमें बहुत सी विशेषताएं निहित हैं जिन्हें मत्ती और मार्कुस ने छोड़ दिया है। दूसरा, डॉक्टर लूका ने क्रिसमस के गीत को हमें दिया है। तीसरा, डॉक्टर लूका के पास कुंवारी से यीशु के जन्म के विषय में अन्य सुसमाचारों की अपेक्षा सबसे विस्तृत वर्णन है। प्रथम दो अध्यायों में वह हमें प्रसूति विज्ञान का अविचलित अभिलेख प्रदान करता है और तब कुंवारी से जन्म के बारे में एक स्पष्ट और निष्कपट विवरण देता है। डॉक्टर लूका से लेकर डॉक्टर हावर्ड केली और स्त्री रोग विशेषज्ञ जॉन्स हॉपकिंस के बीच कुंवारी से जन्म के विषय में एक प्रभावशाली समर्थन है जो मिथ्या धर्म विज्ञानी शिक्षकों के कथन को बिल्कुल ओछा या तुच्छ बना देता है जब वे निर्लज्जता से कहते हैं कि कुंवारी से जन्म जीव विज्ञान संबंधी एक असंभावना है। और चौथी विशेषता, डॉक्टर लूका हमें 20 आश्चर्यकर्मों का वर्णन देते हैं जिसमें से 6 किसी भी अन्य सुसमाचार में वर्णित नहीं है। और पांचवा, उसी प्रकार से वह हमें 23 दृष्टांत देते हैं और उनमें से 18 किसी दूसरे में नहीं पाए जाते हैं। उड़ाव पुत्र और भले सामरी का दृष्टांत इस तीसरी सुसमाचार में निराले और अनोखे हैं। छठवां, वह हमें हमारे पुनरुत्थित प्रभु के एमोस के मार्ग में चलने के बारे में बिल्कुल मानवीय अभिलेख देता है और यह प्रमाणित करता है कि यीशु अपने पुनरुत्थान के बाद अर्थात जी उठने के बाद भी मानव था। डॉक्टर लूका स्पष्ट करते हैं कि पुनरुत्थान आत्मा का नहीं था परंतु देह का था। यीशु स्वाभाविक देह में बोया गया और आत्मिक देह में जिलाया गया था। पहला क्रंथियों के पत्री 15:44 में हम इसे पाते हैं। और सातवां है, सुसमाचार को एक सुस्पष्ट मानवीय संवेदना व्याप्त करती है जो यीशु की सच्चे मानवीय स्वभाव को और साथ ही साथ पहली शताब्दी के इस चिकित्सक के विशाल हृदय के संवेदना को प्रकट करता है जो मानव जाति की पीड़ा के बारे में प्रत्यक्ष रूप से बहुत कुछ जानता है। और आठवीं विशेषता है, डॉक्टर लूका औषधि के जनक हिप्पोक्रेटस से भी ज्यादा औषधि संबंधी शब्दों का उपयोग करता है। प्रिय मित्र, आइए अब हम इस पुस्तक की रूपरेखा को देखें। पहला है परिपूर्ण मनुष्य का जन्म और उसका परिवार, अध्याय 1-3। दूसरा, परिपूर्ण व्यक्ति की परीक्षा, अपने नगरवासियों के द्वारा तिरस्कार किया जाना, अध्याय 4। तीसरा, गलीली क्षेत्र में परिपूर्ण व्यक्ति की सेवकाई, अध्याय 5-9। चौथा, यरूशलेम के मार्ग पर परिपूर्ण व्यक्ति की सेवकाई, अध्याय 10-18। पांचवा, यरीहो और यरूशलेम में परिपूर्ण व्यक्ति की सेवकाई, अध्याय 19-21। छठवां, परिपूर्ण व्यक्ति के साथ विश्वासघात, मुकदमा और मृत्यु, अध्याय 22-23। सातवां, परिपूर्ण व्यक्ति का पुनरुत्थान, अध्याय 24:1-48। आठवां, परिपूर्ण व्यक्ति का स्वर्ग में उठा लिया जाना, अध्याय 24:49-53। प्रिय मित्र, इस पुस्तक के यही रूपरेखा है जिसका अध्ययन हम आगे विस्तृत रूप से करेंगे और देखेंगे कि लूका रचित सुसमाचार के इस पुस्तक में लूका ने हमें किन किन बातों को ध्यान में रखने के लिए कहा है। मेरे मित्रों, आज हमने इस पुस्तक के परिचय को देखा है और मैं आशा करता हूँ कि इस परिचय के द्वारा आपने बहुत सारी बातों को जान लिया है कि लूका हमें इस सुसमाचार में किन किन बातों को बताना चाहते हैं। आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आने वाले अध्ययन में हम निश्चित रूप से इस सुसमाचार के द्वारा आत्मिक लाभ को प्राप्त करेंगे। आप इस अध्ययन को न खोएं, न छोड़ें, परंतु अपने मित्रों को भी बताएं ताकि हम सब एक साथ प्रभु के वचन का अध्ययन कर सकें और अपने जीवन में आत्मिक आशीष को प्राप्त कर सकें। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे।
हे प्रभु यीशु, तुमको प्रणाम, गाते हैं हम वंदन गा। हे प्रभु यीशु, तुमको प्रणाम, गाते
शीश नवाए, जय जय
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
तुम ही।